ओम शांति। एक बार फिर से प्यार से बोलेंगे ओम शांति। राजयोग अभ्यास के प्रातःकालीन सत्र में कल आपने समझा स्वयं की सत्य पहचान, कि हम केवल शरीर नहीं लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। परम धाम से आत्माएं इस सृष्टि पर आई हैं और ये सृष्टि एक विशाल रंगमंच की तरह है, और आज हम समझेंगे परम पिता परमात्मा की सत्य पहचान क्या है। योग अर्थात आत्मा का परमात्मा से संबंध। तो साधक कौन है ये तो समझा, लेकिन अब साध्य कौन है जिससे हमें योग लगाना है, तो उनका भी सत्य परिचय चाहिए। तो हम सभी भगवान को याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन अपनी अपनी श्रद्धा भावना परंपरा या जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वही हम करते हैं। फिर हमारी शिकायत होती है कि भगवान की याद में हमारा मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि सत्य पहचान नहीं है। जैसे दुनिया में भी जिसको हम नहीं जानते उसको हम याद कर सकते हैं, तो याद वही आते हैं जिनको हम जानते हैं और संबंध में भी हैं, और जिनसे हमें बहुत समीप संबंध है वो तो उनको भूलना ही मुश्किल होता है। तो परमात्मा से परिचय और संबंध जब हैं तो उनको फिर याद करना मुश्किल नहीं होता है। तो जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो जितने मुंह उतनी बातें, जितने दिमाग उतने विचार, इतनी मान्यताएं हैं, इतने विश्वास प्रचलित हैं भगवान के बारे में कि हम मूंझ जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में ही अनेक मत मतांतर हैं, अन्य धर्मों की तो बात अलग है। तो हमारे यहाँ क्या क्या मानते हैं? आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। फिर भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, कण कण में भगवान हैं, वो हम सबके हृदय में वास करते हैं। फिर ये भी मान्यता है नेचर इज गॉड, खासकर जो साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट हैं वो प्रकृति को मानते हैं। फिर कहते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, वो निराकार निर्गुण निरंजन है। फिर कोई कहते हैं हमारे इष्ट देव धर्म पिता गुरु ही भगवान है। कोई नास्तिक है, कोई कहते हैं, भारत में तो शायद कोई नास्तिक नहीं होता, आप में से कोई है जो भगवान को नहीं मानते हैं कोई? और फिर कोई कहते हैं जी कर्म ही पूजा है, अच्छे कर्म करो उसमें ही भगवान की आराधना है। तो फिर सत्य क्या है? तो हमारा विवेक ये स्वीकार करता है कि ईश्वर एक है, तो कौन है वो? इतनी सारी मान्यताओं में सत्य थी कैसे है? एक कहानी आती है कि एक बार 5 अंधे किसी नगर से जा रहे थे, तो वो तो अंधे थे, उन्होंने तो हाथी कभी देखा नहीं, देख भी नहीं सकते। तो देखा बहुत शोर है बच्चों का, तो पूछा क्या है? तो कहा हाथी जा रहा है। तो पूछा हाथी क्या होता है? बोला एक बहुत बड़ा जानवर होता है, सबसे बड़ा जानवर होता है। तो उनको जिज्ञासा हुई, फिर सोचा जब ये हाथी रुकेगा तो हम इसको छू कर समझेंगे ये हाथी क्या है। तो वो पांचों ने उसी को छुआ, तो हर एक ने एक एक अंग को छुआ, एक ने पीठ को छुआ, एक ने टावा, एक ने पूंछ को छुआ, एक ने कान को, एक ने सूंड को। और फिर छूने के बाद वो आपस में अपना अपना जो उन्होंने अनुभव किया वो बताने लगे। तो जिसने पीठ को छुआ उसने कहा हाथी तो मुझे दीवार जैसा लग रहा था, जिसने टांग को छुआ उसने कहा ये तो खंभे जैसा लग रहा था, जिसने पूंछ को छुआ उसने कहा ये तो रस्सी जैसा लग रहा था, जिसने कान को छुआ उसने कहा ये तो सुपड़े जैसा लग रहा था, जिसने सूंड को छुआ उसने कहा ये तो पाइप जैसा लग रहा था। अब हाथी तो इनमें से एक भी जैसा नहीं है, और अगर पांचों को भी हम मिला दें तो भी हाथी बनता है नहीं बनता है। तो क्यों गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है? क्योंकि वो पूरे हाथी को एक साथ देख नहीं पा रहे, सिर्फ छूकर वो उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर के साथ भी हमारी यही स्थिति है कि परमात्मा को हम देखते नहीं हैं, अनुभव करते हैं। और अनुभव कैसे करते हैं? मानो मेरे जीवन में संकट आए, हम कब भगवान को याद करते हैं? ज्यादातर दुख के समय ही याद करते हैं। तो कष्ट है, दुख है, संकट है, फिर हम याद करते हैं, फिर कोई हमें राय देते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, है ना, हम हनुमान जी संकट मोचक हैं। तो हमने पाठ किया, हमारा वो संकट दूर हो गया। कोई कहते हैं गुरु सिद्ध गुरु हैं, ये आपके सारे कष्ट निवारण कर देंगे, हम वो गुरु जी के पास जाते हैं। या कहेंगे जो देवी हैं, इनके दर्शन मात्र से ही सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, हम वो करते हैं। जो हमने किया और जिस माध्यम से हमें वो प्राप्ति हो गई, मेरा भगवान कौन हो गया, कौन हो गया? जिनके द्वारा मुझे वो प्राप्ति हुई। तो वो हमारी, हम कहेंगे कि वो हमारा एक अनुभव है, वो परमात्मा का समग्र स्वरूप नहीं है। जैसे वो पूरे हाथी को नहीं समझ पा रहे, सिर्फ उसके एक अंग तक पहुंच रहे हैं, ऐसे ही हम भी परमात्मा की कोई एक शक्ति का अनुभव कर लेते हैं, वो परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप नहीं है। फिर हम कहते हैं ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर सत्य है तो वो सत्य भी आज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से समझा जाता है। विज्ञान मानता है कि जो प्रयोगशाला में प्रमाणित कर दिया जाए वही सत्य है, अगर प्रमाण नहीं है तो उसको सत्य नहीं मानेंगे। तो सभी चीजें प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं हो सकती हैं। जैसे विज्ञान मानता है जो दिखाई देता है, जैसे एक नास्तिक प्रोफेसर थे, वो अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तो कोई कारण से भगवान का जिक्र आया तो वो बच्चों को समझाने लगे, बच्चों भगवान जैसी कोई चीज या कोई है नहीं, वो भगवान दिखाई देता है? तो बच्चों ने कहा नहीं दिखाई देता है, तो नहीं है। फिर उन्होंने क्लासरूम की और भी चीजें दिखाई, ये डेस्कटॉप दिखाई देता है, हाँ तो ये है, ये ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, हाँ है। तो जो दिखाई देता है वो है, जो नहीं दिखाई देता वो नहीं है। तो एक स्टूडेंट होशियार था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा सर मुझे भी पूछना है। उन्होंने कहा पूछो। तो उन्होंने स्टूडेंट को पूछा क्या हमारे सर का दिमाग दिखाई देता है? तो दिमाग दिखाई नहीं देता है, तो दिमाग नहीं है क्या? तो दुनिया में सब चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं। आज हवा है हम नहीं देखते हैं, खुशबू है हम नहीं देखते हैं, जो भी चीजें सूक्ष्म स्तर पर हैं, हमारी आंखों की क्षमता से परे हैं, अणु परमाणु। अब कोरोना वायरस आया, कोई दिखाई थोड़ी देता था, लेकिन वो वायरस जानलेवा था, छोटा सा वायरस कितना पावरफुल। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा दिखाई देने के विषय नहीं, लेकिन अनुभव करने के विषय हैं। फिर कानून मानता है गवाह ही सत्य है, अगर गवाह ने गलत गवाही दे दी तो निर्दोष दोषी साबित हो जाता है, झूठी गवाही दे के वो दोषी को भी निर्दोष साबित कर सकते हैं, और जज कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे निर्णय देना है गवाहों के आधार पर। ऐसे ही राजनीति में सत्य क्या मानते हैं? बहुमत ही सत्य है, फिर चाहे अपराधी को ही क्यों ना बहुमत मिल जाए, वो ही सत्ता में आ जाएगा। समाज क्या मानता है? जिसके पास शक्ति है, कोई भी प्रकार का बल है, चाहे वो धन की शक्ति है, पद की शक्ति है, बाहुबल है, वो जो कहेगा वो सत्य है। तो उसको क्या कहते हैं कहावत में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो पावरफुल है वो जो कहेगा वही सत्य है। अध्यात्म किसे सत्य मानता है? अध्यात्म मानता है जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम। ये जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जगत मिथ्या क्यों कहा गया? ऐसा नहीं कि संसार है ही नहीं, लेकिन ये संसार में परिवर्तन हो रहे हैं, हर पल इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए इसे मिथ्या कहा गया। इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। लेकिन ब्रह्म सत्य है क्योंकि वो अविनाशी है और सदा एक जैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बार राजा जनक ने एक सपना देखा कि उनके ऊपर पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया है, जीत लिया है, उनको बंदी बना लिया है। और फिर उन्होंने उनको कहा, राजा ने कहा कि राजा जनक, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका राज्य आपको लौटा दूं, तो मैं लौटा दूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे अपना राज्य नहीं चाहिए, मुझे सन्यासी बनना है, आप मुझे जंगल में छोड़ दो। तो उनके सैनिक उनको ले जाते हैं जंगल में, और वहां पहुंचने पर उन्हें लगता है कि भूख लगी है, तो वो सैनिकों को कहते हैं कि एक वक्त के भोजन का प्रबंध कर दो, फिर आप जा सकते हो। तो सैनिकों ने उनके लिए भोजन लगाया, पर वो जंगल था, चील उड़ रहे थे आसमान में, तो उतने में ही वो चील ने झपट्टा मारा और रोटी लेकर चली गई। उनकी आंख खुली तो देखा कोई मेरे ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, मैं तो अपने बिस्तर पर सोया हूँ, कोई जंगल नहीं, कोई चील नहीं। तो उनको पर विचार चलने लगा कि ये सब क्या है, मेरा वर्तमान सत्य है या मेरा ये स्वप्न सत्य है। तो जब वो अपने दरबार में गए सुबह, तो उनके गुरु थे, तो गुरु को उन्होंने ये सवाल पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, क्या सत्य है, ये सपना सत्य है या मेरा वर्तमान सत्य है। तो गुरु ने जवाब दिया कि राजन, न तो आपका स्वप्न सत्य है और ना ही ये वर्तमान सत्य है, जिसने इन दोनों स्थितियों का अनुभव किया वो सत्य है। तो किसने अनुभव किया, किसने अनुभव किया? आत्मा ने अनुभव किया। तो आत्मा अविनाशी है, इसलिए सत्य के दो अर्थ होते हैं, सत्य माना अविनाशी और सत्य माना सत्य। तो फिर परमात्मा का सत्य, हम सब मानते हैं ईश्वर एक है और वो सत्य है, तो उसका सत्य क्या है? तो जैसे सुनार के पास कसौटी होती है, खरा सोना है या मिलावट वाला सोना है, तो ऐसे ही परमात्मा के सत्य की पांच बातें, विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर हम उसे परमात्मा कह सकते हैं। और वो हैं, वो सर्वधर्म मान्य है, वो सर्वोच्च है, वो सर्व से न्यारा है, यानी जन्म मरण पाप पुण्य सुख दुख कर्म फल से न्यारा है, सर्वज्ञ है और सर्व का दाता है। तो जो भी हमने मान्यताएं देखी ईश्वर के बारे में, अगर ये पांचों विशेषताओं की कसौटी पर वो खरी उतरती हैं, तो वही ईश्वर का रूप है, क्योंकि सत्य तो एक ही होगा। तो फिर कौन है सर्वधर्म मान्य और सर्वोच्च, हम क्लास के बाद बात कर लेंगे। कौन है सर्वधर्म मान्य और सर्वोच्च? तो जितने भी धर्म पिता हुए, मतलब सभी धर्मों में किसकी मान्यता है? तो भले ही हम नाम अलग अलग देते हैं, हम प्रभु परमात्मा ईश्वर कहते हैं, वो खुदा अल्लाह कहते हैं, वो गॉड फादर कहते हैं, लेकिन वो है एक ही। तो वो कौन है? तो सभी धर्म पिताओं ने भगवान के बारे में कहा, तो क्या उनके विचार थे ईश्वर के बारे में? तो जैसे ईसा मसीह कृष्ण धर्म के धर्म स्थापक हुए, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड, लीड मी दाई काइंडली लाइट। मैं उस परमात्मा का भेजा हुआ पुत्र हूं, और गॉड इज लाइट माना परमात्मा ज्योति है, प्रकाश है। और इसीलिए जब वो चर्च में प्रेयर करने जाते हैं, तो आप देखेंगे वो कैंडल जलाएंगे, हमेशा एक कैंडल जलती रहती है, बड़ी कैंडल, और जो भी जाएगा वो कैंडल जला के प्रेयर करेगा। और उनके अंतिम शब्द भी क्या थे? हे पिता, तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या करें। तो संबोधित किया ईश्वर को पिता, क्योंकि अपने को उसका पुत्र कहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं, लेकिन परमात्मा वो लाइट है और मैं उसका पुत्र हूं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म जो संसार का दूसरा बड़ा धर्म है, मुस्लिम धर्म में क्या कहते हैं, नूरे इलाही, मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हुए, उन्होंने कहा नूरे इलाही, ये उर्दू शब्द हैं, हर एक ने अपनी भाषा में कहा, तो उसका अर्थ है अल्लाह नूर है, नूर माना प्रकाश या इंग्लिश में लाइट। इसीलिए वो मूर्ति पूजा नहीं करते, आप कभी भी मस्जिद में जाएंगे कोई मूर्ति नहीं होती, और जब वो हज भी करने जाते हैं मक्का मदीना में, तो मक्का में जो है वो काबा का पत्थर है और उसे वो चूमते हैं और छूते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं, उसे वो पवित्र पत्थर मानते हैं और अल्लाह का प्रतीक मानते हैं। और वो जब हज करते हैं तो कहते हैं हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल करो, तो उनका हज कबूल होता है। तो ऐसा हर मुस्लिम मानता है कि जीवन में एक बार मुझे हज करना है, हज करने से हमारे पाप कट जाते हैं, जैसे हिंदू मानते हैं कि तीर्थ करने से हमारे को पुण्य मिलता है, हमारे पाप कटते हैं, तो ऐसे वो भी मानते हैं। तो इसका मतलब मुस्लिम धर्म में भी किसकी मान्यता हुई, नूर की, अल्लाह को नूर माना गया। मोहम्मद साहब ने कहा आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, कि मैं तो एक इंसान हूं, मुझे खुदा मत कहो, लेकिन उस खुदा का नूर मुझे मिला है जो मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे ही गुरु नानक देव जी, उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम अकाल पुरुष कर्ता पुरुष निर्भय निर्वय रजोनी साहब आदि सत जुगादि सच, है भी सच होसी भी सच। जो सिख धर्म को मानते हैं वो इस बात को जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो एक निराकार है, वो सत्य है और काल से परे है और निर्भय निर्वैर है। और उन्होंने कहा ऐसे परमात्मा का मैं दास हूं। उन्होंने भी कभी अपने को भगवान नहीं कहा, उनके 10 गुरु हुए सिखों के, उन सब की शिक्षाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब है। तो आप कभी गुरुद्वारे में जाएंगे ना तो वहां भी मूर्ति पूजा नहीं होती है, गुरु ग्रंथ रखा होता है और उनको वो पढ़ते हैं, जो शिक्षाएं हैं उनको वो अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं, उसका पाठ करते हैं। तो फिर सिख धर्म में भी निराकार परमात्मा को माना गया। ऐसे ही महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्हें भी बुद्धत्व प्राप्त होने से पहले दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ और उसके बाद उन्हें वो बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और बौद्ध धर्म में ध्यान करते हैं, जैन मेडिटेशन है, विपस्ना मेडिटेशन है। तो जैन मेडिटेशन जापान में विशेष रूप से वो 3 फुट की ऊंचाई पर, 3 फुट की दूरी पर एक स्टैंड पर गोल पत्थर रखकर उसका ध्यान करते हैं। उसको वो कहते हैं चिनकोन सेकी, यानी शांति देने वाला। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में भी निराकार परमात्मा की, ज्योति स्वरूप परमात्मा की मान्यता है। और भी धर्म जैसे पारसी धर्म है, उसमें उनकी अग्यारी होती है, उनके टेम्पल को अग्यारी कहते हैं और बीच में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसे वो परमात्मा का रूप मानते हैं। अग्नि भी प्रकाश, प्रकाश का ही प्रतीक है। तो जितने भी धर्मों को हम देखेंगे, लगभग हिंदू धर्म के अलावा वो सभी धर्मों में ईश्वर की लाइट रूप की मान्यता है। लेकिन हिंदू धर्म में तो फिर हमारे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कितने कितने देवी देवता हैं जी, 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो किस किस ने सुना है 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो हाथ उठा सकते हैं। हाँ देखो, काफी लोगों ने सुना है। तो जब हम 33 करोड़ देवताओं की बात करते हैं तो हम इतने की पूजा तो नहीं कर सकते, तो उनका सिर्फ गायन है, मुख्य मुख्य की पूजा होती है। तो हम श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी, देवियों की, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी ही पूजा करते हैं, ज्यादातर इन्हीं देवताओं की पूजा होती है। कुछ अलग अलग क्षेत्रीय इलाकों में उनके थोड़े क्षेत्रीय देवता भी होते हैं। तो जैसे हमारे देवताएं हैं, अब हम सर्वोच्च और सर्वधर्म की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक दूसरे से ऊंचे हैं, सर्वोच्च नहीं है और सर्वधर्म मान्य भी नहीं है, क्योंकि अन्य धर्म तो स्वीकार नहीं करते। पर फिर कौन ऊंचा है हिंदू धर्म में, सर्वोच्च कौन है? तो जैसे श्री राम है, उन्होंने भक्ति की शिव जी की। जब उनको रावण से युद्ध करना था, उन्हें शक्ति चाहिए थी, समुद्र पार करना था, तो उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उसे कहा रामेश्वरम। रामेश्वरम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है राम के ईश्वर। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी महाभारत के पहले वृंदावन में शिव जी की पूजा की और उसे कहा गोपेश्वरम। तो उनके भी ईश्वर कौन हो गए? शिव हो गए। जितनी भी देवियां हैं वो शिव शक्ति कहलाती हैं। संसार से असुरों का संहार करने के लिए शिव ने देवियों को उत्पन्न किया, इसलिए उन्हें असुर संहारिणी कहते हैं। हर देवी कोई ना कोई असुर का संहार कर रही है, जैसे दुर्गा ने महिषासुर को मारा, ऐसे हम सब पूजा करते हैं, नवरात्रि मनाते हैं, तो देवियों को उस रूप में पूजा जाता है। तो शिव शक्ति है, माना उनके रचयिता भी कौन हो गए? शिव हो गए। और ऐसे ही जो हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी ने किसकी भक्ति की? श्री राम की। श्री राम ने किसकी भक्ति की? शिव जी की। तो सर्वोच्च कौन हो गए? शिव। कोई गणेश जी की भक्ति करते हैं तो गणेश जी के पिता कौन है? शिव। और मानो कोई गुरु को मानते हैं, मानो विवेकानंद जी को मानते हैं, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस किसके भक्त? काली देवी के भक्त थे। और काली देवी कौन है? शिव शक्ति है। तो सर्वोच्च कौन है? शिव। तो हमारे हिंदू धर्म में जो सर्वोच्च मानीय स्वरूप है वो है शिव, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, यानी वो देवों के भी देव हैं। सभी देवताओं में जो उच्च हैं वो शिव हैं। और शिव ही एक ऐसे भगवान हैं हिंदू धर्म में जिनकी निराकार रूप में पूजा होती है, शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। आप देख रहे हैं जो शिव जी का प्रतीक है, इस रूप में हम शिव की पूजा करते हैं और उन्हें हम शिवलिंग कहते हैं, माना ज्योति का प्रतीक। ये संस्कृत शब्द है शिवलिंग, यानी वो ज्योति का प्रतीक है। और ऐसे 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग तीर्थ जो हैं वो भारत में हैं। वो हैं अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, परली वैद्यनाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ हैं जो मुख्य तीर्थ हिंदू धर्म में माने जाते हैं। तो परमात्मा का ये ज्योति स्वरूप तो है, लेकिन हम ज्योति की पूजा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूजा की परंपरा है, हमें जल चढ़ाना है, फूल फल चढ़ाने हैं। तो हमने क्या किया, उस ज्योति को आकार दे दिया, ज्योति को रूप दे दिया। जैसे ज्योति जब जलती है तो कौन सा रूप होता है ज्योति का? जब हम दिया जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका रूप क्या होता है? या तो वो ओवल होती है या फिर गोल होती है। तो हम भी शिवलिंग को यही रूप देते हैं, गोल बनाते हैं या तो ओवल बनाते हैं। और फिर अगर उसको हमने आसन दिया तो थोड़ा हाइट पर शिवलिंग की स्थापना होती है। अगर हम जमीन पर ही शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो ऐसे भी शिवलिंग की पूजा होती है, दोनों ही रूप से उनकी पूजा की जाती है। तो परमात्मा का हिंदू धर्म में भी जो सर्वोच्च मानीय स्वरूप है वो क्या है? ज्योति स्वरूप है, जो अन्य धर्मों में भी मान्य है। तो फिर परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या हुआ, जो सर्व धर्म मान्य है? क्या हुआ? ज्योति स्वरूप। तो परमात्मा का सत्य स्वरूप ज्योति स्वरूप है। और हम शिवलिंग पर 3 लाइन बनाते हैं, ये 3 लाइन उनके 3 विशेषताओं का प्रतीक है। वो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकी नाथ हैं और त्रिमूर्ति हैं, यानी तीनों कालों के ज्ञाता हैं, त्रिलोकी नाथ हैं। इसीलिए वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान है। जैसे हमने 5 विशेषताएं देखी ना, परमात्मा कौन है? जो सर्वोच्च है, जो सर्वधर्म मान्य है, जो सर्व से न्यारा है, सर्वज्ञ है और सदा दाता है। तो वो सर्वशक्तिवान है क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, त्रिमूर्ति हैं, 3 देवताओं की वो रचना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए वो त्रिमूर्ति कहलाते हैं। ये तीन देवताएं नेक्स्ट टू गॉड हैं, यानी परमात्मा सर्वोच्च है, उनके बाद जो नेक्स्ट ऊंचे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उनके द्वारा ही परमात्मा स्थापना पालना और विनाश का कार्य करवाते हैं। तो इसीलिए वो सर्वशक्तिवान है। और शिव जी के ऊपर हम पूजा में तीन पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं, और किसी भी देवता पर पूजा करते हुए हम तीन पत्ते वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ शिवजी पर ही वो पत्ता चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो ये तीन तीन विशेषताएं जो हैं वो शिवजी के अंदर हैं। और वो सर्व से न्यारे हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, पाप पुण्य कर्म फल से, क्योंकि अजन्मा है। परमात्मा शिव का गर्भ से जन्म नहीं होता, वो मनुष्य आत्मा के समान जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, और इसीलिए उन्हें पाप पुण्य कर्म फल, क्योंकि कर्म करेंगे, जब शरीर धारण किया है तो कर्म करेंगे, कर्म करेंगे तो कर्म का फल सुख दुख के रूप में मनुष्य के सामने आता है, इसीलिए उन्हें शंभु भी कहते हैं। शंभु भी संस्कृत का शब्द है जो स्वयं भू से बना है। तो भू माना उत्पन्न होना, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है वो शिव है। तो इसीलिए उनके कोई माता पिता नहीं, उनका कोई शिक्षक नहीं, उनका कोई गुरु नहीं, क्योंकि ये तीन संबंध मनुष्य के जीवन में हमेशा ऊंचे होते हैं। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माता पिता के सामने वो कौन है, बच्चा ही है। शिक्षक के सामने वो स्टूडेंट ही है, और गुरु के सामने वो शिष्य ही है। तो उनके ये तीनों ही संबंध नहीं है, वो पिताओं का भी पिता है, वो शिक्षकों का भी शिक्षक है, और गुरुओं का भी गुरु है। तो इसीलिए वो सर्वोच्च हैं। तो परमात्मा जन्म मरण, परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए हम शिव जयंती नहीं मनाते, शिवरात्रि मनाते हैं। और सभी देवताओं की, धर्म पिताओं की जयंती होती है, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया, इस संसार में कर्म लिया, कर्म किया। गुरु नानक देव जयंती, बुद्ध जयंती, ये सब जयंती मनाते हैं। जो भी धर्म पिता हुए, क्राइस्ट का भी जन्म हुआ ना, तो उनका भी हम वो क्रिसमस डे मनाते हैं 25 दिसंबर को। तो सबकी जन्म जयंती है, और मरण दिवस भी है, चाहे वो उसको निर्वाण दिवस के रूप में लेते हैं, लेकिन शिव का जन्म ही नहीं हुआ इसलिए उस तरह का हम कुछ भी शिव जी के लिए नहीं मनाते हैं। पर यहाँ पर कई बार भ्रम होता है, शिव शंकर एक हैं, हम शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं कि शिवजी और शंकर जी एक हैं। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है दो रूप अलग अलग हैं, तो दो रूप अलग हैं, दो नाम भी अलग हैं। अच्छा चलो किसी एक के चार नाम हो सकते हैं, पर होगा तो वही ना, जैसे मेरा घर, घर का नाम अलग हो सकता है, मेरा ऑफिस का नाम अलग हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स मुझे कोई अलग निक नेम से बुला सकते हैं, लेकिन मैं हूं तो वही व्यक्ति है ना। लेकिन यहाँ तो रूप ही अलग है, शंकर जी तो साकार शरीरधारी हैं, मनुष्य जैसी देह है उनको, जैसे अन्य देवताओं को है, और शिव जी तो निराकार हैं। फिर शंकर जी तो तपस्वी रूप में हैं, कहीं भी आप मंदिर में चित्र में देखेंगे उनका कौन सा रूप दिखाई देता है, तपस्वी रूप। इसका मतलब वो किसी की तपस्या में लीन है, तो वो किसकी तपस्या कर रहे हैं, जरूर उनसे ऊंचा कोई और है जिसकी वो तपस्या कर रहे हैं। तो वो परमात्मा शिव की तपस्या में लीन रहते हैं, और इसलिए कई बार शंकर जी के मंदिरों में शिवलिंग उनके सामने दिखाया जाता है कि वो शिव की भक्ति कर, शिव की तपस्या करते हैं, और अपनी तपस्या से वो शिव के समीप हैं। इसीलिए हम उनका नाम साथ में ले लेते हैं, जैसे जो भी साथी हैं उनका नाम हम साथ में लेते हैं, हम श्री राधे कृष्ण कहते हैं, हम श्री गौरी शंकर कहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं, सीता राम कहते हैं। तो फिर नाम साथ में लेने का मतलब ये तो नहीं कि दोनों एक हैं, नाम साथ में लेने का मतलब क्या है, साथी हैं, समीप संबंध में हैं, इसलिए हम उनका नाम साथ में लेते हैं। ऐसे ही शिव शंकर हम कहते हैं, इसका मतलब वो संबंध में समीप हैं और साथी हैं, इसीलिए हम उनका नाम साथ में लेते हैं। और फिर उनका कर्तव्य भी अलग अलग, शंकर जी विनाशकारी देवता माने जाते हैं, वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, संसार में प्रलय आ जाती है, और शिव तो कल्याणकारी हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, शिव भी संस्कृत शब्द है, तो शंकर जी देवता हैं, जैसे तीन त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें वो एक देवता हैं और शिव परमात्मा हैं और उनसे भी सर्वोच्च हैं। तो हम उन्हें परमात्मा कहते हैं, यानी वो भी एक आत्मा है जो परम है, परम प्लस आत्मा है ना, आत्मा है एक परम और परम है, तो आत्मा है माना आत्मा के समान है, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है इसलिए परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे जिसका बच्चा होता है वो उसी की तरह होता है ना, एक गाय का बच्चा गाय की तरह होगा, शेर का बच्चा शेर की तरह होगा, ऐसे ही आत्मा परमात्मा की संतान है तो किसकी तरह होगी, परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। पर परम किसमें है, उसका मतलब ये नहीं कि वो हजारों सूर्यों से तेजों में है, उसका तेज हम सहन भी नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों ही समान है, सिर्फ गुणों में परम है। परमात्मा जो है वो गुणों में असीम है, सागर के समान है, इसकी तुलना हम सागर से करते हैं, शास्त्रों में कहा गया कि उसकी महिमा अपार है, इतनी महिमा है कि हम सारे जंगल को कलम बनाएं, सारी पृथ्वी को कागज बनाएं और सारे सागर को शाही बनाएं और स्वयं सरस्वती बैठ करके भी उसकी महिमा लिखे तो भी उसकी महिमा अपरम अपार है, तो इतनी ईश्वर की महिमा है। तो व्यक्ति गुणों से बड़ा होता है, दुनिया में भी देखते हैं कोई शरीर के आकार से डील डॉल से या बिल्ट से बड़ा नहीं होता है, किससे बड़ा होता है, कैसे बड़ा होता है, उसके जो गुण हैं क्वालिटीज हैं उनसे वो बड़ा होता है। मानो किसी भी संस्था का जो मुखिया है या डायरेक्टर है जो भी हम कहते हैं, वो छोटे आकार छोटे हाइट का हो सकता है, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या होगा, उसका सिलेक्शन ही उस बेस पर होता है कि उसका जो शरीर है वो मजबूत होना चाहिए। कई जगह तो जैसे मिलिट्री वगैरह में तो पूरा हाइट का भी पैरामीटर होता है, उसी हिसाब से ही उनको भर्ती किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीर में बड़ा है तो वो बड़ा है, बड़ा कौन है, जो उस विशेषताओं वाला है कि उस योग्यता को रखता है कि वो उस संस्था का मुखिया है। तो इसीलिए परमात्मा जो है वो गुणों में परम है और उनको हम शिव कहते हैं। और सब धर्मों में भगवान का नाम अलग अलग है जैसे हमने बताया, लेकिन हिंदू धर्म में हम उन्हें शिव क्यों कहते हैं, क्योंकि शिव संस्कृत भाषा से आया हुआ नाम है जिसका अर्थ है कल्याणकारी, तो शिव कल्याणकारी है। दूसरा अर्थ है शांति, वो सदा शांति का दाता है। फिर तीसरा अर्थ है पवित्र, वो सदा पवित्र है इसीलिए शिव है। फिर तीसरा अर्थ चौथा अर्थ है बिंदु, वो बिंदु रूप है इसीलिए शिव है। दुनिया में यथा नाम तथा गुण नहीं होते, नाम होगा शांति और जीवन में शांति हो कोई जरूरी नहीं है, नाम होगा संतोष, संतोष नाम की चीज नहीं है, नाम होगा रामचंद्र, राम जैसे एक भी गुण नहीं होंगे। तो दुनिया में यथा नाम तथा गुण नहीं होता, लेकिन परमात्मा का जैसा नाम है वैसे ही उनके गुण है। इस पर एक जोक जैसा आता है, ऐसे तो हंसने वाली बात है कि एक बार एक व्यक्ति गांव का था, उसकी शादी हुई तो उसका नाम था छज्जूमल। उसकी पत्नी को पसंद नहीं आया, उसने कहा ये क्या नाम है छज्जूमल, तो कहा कि शादी के बाद है ना लोग अपना नाम बदल लेते हैं, तो आप भी अपना नाम बदल लो, मुझे ये पसंद नहीं। तो उसने सोचा ठीक है, बोला था वो, उसने कहा पत्नी को ठीक नहीं लगता है मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं दो चार लोगों से पूछूंगा जिसका नाम अच्छा लगेगा वो रख लूंगा। तो गया, देखा एक गली में एक औरत ओखली कूट रही है, उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। उसने कहा लक्ष्मी है, ओखली कूट रही है, ठीक नहीं है। फिर आगे गया तो एक व्यक्ति भीख मांग रहा था, तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम धनपत है, धनपत है, भीख मांग रहा है। फिर आगे गया तो एक अर्थी जा रही थी, तो उसने सोचा इनका नाम पूछता तो पूछा, बोला इनका नाम अमरनाथ है, तो ये अमरनाथ है और मर गए, ठीक नहीं है, वापस आ गया वो, और उसने अपनी पत्नी को कहा, लक्ष्मी कूटे ओखली, धनपत मांगे भीख, अमरनाथ जी मर गए, मेरा छज्जू नाम ही ठीक। तो दुनिया में भी हम देखते हैं कि नाम और गुण वही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम उन्हें शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उन्हीं गुणों वाले हैं जो उनका नाम का अर्थ है, इसीलिए हम उन्हें शिव कहते हैं। पर हैं वो ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार परमात्मा, जिसकी सभी धर्मों में भी मान्यता है, और वो सर्वोच्च हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, सदा दाता हैं, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जिसको अपना शरीर ही नहीं है उसको क्या चाहिए, और वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिवान हैं, आत्मा अल्पज्ञ है, आत्मा को सभी विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता, एक विषय का भी ज्ञान हमें पूरा नहीं हो सकता, एक काल के भी हम पूरे ज्ञाता नहीं होते, लेकिन परमात्मा तीनों कालों का ज्ञाता है और सर्व विषयों का ज्ञाता है, इसीलिए हम उसे सर्वशक्तिवान सर्वज्ञ कहते हैं। अब भगवान कहाँ है, क्योंकि हमने जो मान्यता देखी कण कण सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो क्या सचमुच भगवान हम सबके हृदय में निवास करते हैं या अपने धाम में निवास करते हैं? हिंदू धर्म में तो ये बहुत प्रबल मान्यता है कि सब जगह भगवान है और सबके हृदय में भगवान का वास है। मानते नहीं मानते? मानते हैं हम ये। तो फिर अब हमें ये समझना होगा, क्योंकि ये सब राजयोग की शिक्षा स्वयं परमात्मा शिव की दी हुई शिक्षा है, तो भगवान ही ये सारे राज हमें खोलते हैं। तो परमात्मा क्या हम सबके हृदय में रहते हैं? अच्छा, मान लिया एक बार हम सब में भगवान है, सब जगह भगवान है, मान लिया, तो फिर भगवान के गुण भी प्रकट होने चाहिए, क्योंकि जहां गुणी है वहां गुण जरूर होता है। सूर्य निकला है और प्रकाश ना हो, गर्मी ना हो, ऐसा हो सकता है? हम कोई फूलों के बगीचे से जाएं और खुशबू ना आए, अग्नि जल रही है और गर्मी ना हो, हो सकता है? तो ऐसे ही भगवान जो शांति का सागर है, जो प्यार का सागर है, जो सुखदाता है, वो सबके अंदर है, तो सब कैसे होने चाहिए? सब कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? सबके सबके अंदर शांति होनी चाहिए, सब आपस में प्रेम से रहने चाहिए, एक दो को सुख देने वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसा है? है आज दुनिया में पापाचार है, दुराचार है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, क्या नहीं है? आज एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर देता है, रोज की घटना है। कोई दिन होता है जिस दिन ऐसे समाचार नहीं होते कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को मार दिया? तो क्या जिसने मारा उसमें भी भगवान, जो मर गया उसमें भी भगवान? तो क्या भगवान ने भगवान को मार दिया? क्या कहेंगे? अच्छा, एक जानवर दूसरे जानवर को खा जाता है, तो क्या जानवर ने भगवान ने भगवान को खा लिया? क्या कहेंगे? जानवर तो छोड़ो, इंसान भी जानवरों को खाता है, है ना? खाते हैं ना, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो फिर दुखी होते हैं, हम बीमार होते हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान मेरा कष्ट दूर करो, मेरा दर्द ठीक करो, तो फिर भगवान को क्यों याद कर रहे हैं? वो हमारे अंदर ही है, तो हम उसे क्यों याद कर रहे हैं? पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, जब वो भगवान हमारे अंदर है, हो गया तो कौन से भगवान को हम याद कर रहे हैं? कौन से भगवान को याद कर रहे हैं? तो निश्चित है कि वो हमारे अंदर नहीं है। फिर आज कहीं बदबू आ रही है, कचरा पड़ा हुआ है, हम नाक मुंह बंद करके वहां से चले जाते हैं, किनारा करके चले जाते हैं। कोई हमें गधा कहता है तो हमें गाली लगती है, हाँ, या कुत्ता भी कहते हैं तो गाली लगती है, और भगवान को, भगवान सब जगह है, उसमें कचरे में भी भगवान है, कण कण में भगवान है ना, तो कचरे में भी भगवान है जिससे हम नफरत कर रहे हैं। फिर जो गधा कहता है उसको गाली लगती है, हाँ, कि मेरे को गाली दे रहे हैं, और गधे में भी भगवान है, तो फिर क्या हम भगवान को गाली दे रहे हैं? माना अगर हम थोड़ा गहराई से उस पर विचार करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि परमात्मा सब जगह नहीं है। तो फिर ये बात कहां से आई? कहां से आई? भक्तों से, जो भगवान के परम भक्त हुए, उन्होंने इस भाव से भगवान को याद किया या उनकी भक्ति की, क्योंकि वो भगवान को इस तरह से याद करते थे। आज के भक्त नहीं, कलयुगी भक्त तो स्वार्थ के भक्त हैं, जैसे कहा ना, दुख का समय होता है तभी हमें भगवान याद आता है। लेकिन जो भगवान के सच्चे भक्त हुए, उन्होंने उसे श्वासों श्वास स्मरण किया कि मेरा एक श्वास भी भगवान की याद के बिना न जाए। आजकल भी ऐसा होता है ना, कोई नाम लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम निरंतर उस नाम का जाप करते रहें। तो ऐसे उन्होंने भगवान को याद किया, तो उन्होंने उसे महसूस किया कि जिधर देखो उधर तू ही तू है ना। कोई किसी को इतना याद करेगा तो कैसा महसूस करेगा? हम जहां भी जाते हैं, आश्रम में हैं, मंदिर में हैं, घर में हैं, जंगल में हैं, भगवान का हमें, उसकी शक्ति का अनुभव हमें सभी जगह होता है, कहां उसका अनुभव हमें नहीं होता है। तो उन्होंने ये भाव व्यक्त किया। हाँ, तो दुनिया में भी जैसे किसी को किसी से बहुत प्रेम होता है तो वो क्या महसूस करते हैं उसके बारे में, कि हम कहां भी जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, किसकी याद है? किसकी याद है? उस व्यक्ति की याद है। और फिर प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? हार्ट का सिंबल बनाते हैं। हार्ट का सिंबल बनाने का मतलब ना, वैसे ही कहते हैं ये तो मेरे दिल में है, मेरे हृदय में बसा है। अब कोई व्यक्ति किसी के हृदय में होता है क्या? ये तो एक मानसिक उपस्थिति है, उसकी मानसिक याद है, और उस भाव को व्यक्त किया कि वो मेरे हृदय में है। उन्होंने भी भगवान के प्रति इतना प्रेम किया कि उन्होंने ऐसा महसूस किया, उस भाव को इस तरह से व्यक्त किया कि वो हमारे हृदय में है, हृदय में वास करता है। तो भावना है, कोई सचमुच भगवान हृदय में है वो बात नहीं। तो भावना व्यक्त की तो एक बहुत सुंदर भावना है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से सत्य नहीं है ना। इट्स अ फीलिंग, नॉट अ फैक्ट। लेकिन हमने उसको, शब्दों को सत्य मान लिया और उसे स्वीकार कर लिया कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। फिर दूसरा ये आया ऋषि मुनियों के द्वारा। द्वापर युग में जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने देखा कलयुग आएगा, मनुष्य बहुत पाप करेगा, तो पाप कर्मों से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि देखो, जब आप पाप कर्म कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आप अकेले हो, आप अकेले नहीं हो, लेकिन भगवान सब जगह है, वो आपको देख रहा है। तो उस समय लोगों ने इस बात को माना भी ना, जैसे एक बच्चा छोटा होता है, माँ घर में काम कर रही है और उसको डर है कि कहीं बच्चा निकल ना जाए बाहर, इसको कुछ नुकसान ना हो, तो थोड़ा डरा देती है कि दरवाजे से बाहर नहीं जाना, कुत्ता आ जाएगा या बिल्ली आ जाएगी या कोई उठा के ले जाएगा, जो भी। तो वो भय के कारण वो दरवाजे तक जाएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अब वही बच्चा जब 6-7 साल का हो जाता है, अब उसको कुत्ते बिल्ली से डर लगता है, उसको पता है कि कुत्ता बिल्ली नहीं उठाने वाला, मैं ही उनको उठा सकता हूं। तो ऐसे ही जब आज साइंस और टेक्नोलॉजी की एज है, तो अब इंसान ये नहीं मानता कि भगवान सब जगह है और वो हमें देख रहा है, इसीलिए खुले रूप से सब पाप होते हैं दुनिया में। तो ये बातें जो आई ईश्वर के बारे में, वो जो भावना के रूप में, लेकिन जो सत्य है कि परमात्मा परम धाम में निवास करते हैं और हम उन्हें कहीं भी याद करें, उनका हम अनुभव कर लेते हैं। जैसे सूर्य एक स्थान पर चमकता है, लेकिन प्रकाश तो पूरी दुनिया को मिलता है, मिलता है नहीं मिलता? हाँ, उसकी गर्मी तो सारी दुनिया को मिलती है। तो लेकिन गर्मी और प्रकाश सूर्य के गुण है, सूर्य नहीं है, उसको कोई नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, वो अपने स्थान पर सूर्य चमक रहा है, और पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर कोई कहीं भी हो, उसको सूर्य का प्रकाश और गर्मी मिलती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ हमें अपनी विंडो और अपने दरवाजे खुले करने पड़ेंगे, अगर हम चाहते हैं कि मेरे घर में प्रकाश आए, मेरे घर में वो अनुभव हो। तो ऐसे ही परमात्मा परम धाम से कहीं भी हमें शांति का, सुख का, शक्ति का, प्रेम का अनुभव करा सकते हैं, सिर्फ हमारे मन की खिड़की यानी हमारे मन का जो रिसीवर है वो उससे लगा हुआ होना चाहिए। और इसीलिए ईश्वर की याद का महत्व है कि जब हम उसे याद करते हैं तभी हमें परमात्मा के गुण और शक्तियां अनुभव होते हैं, तब हमने अपने मन को उसके लिए तैयार किया कि हाँ अब हमारा मन उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो परमात्मा परम धाम निवासी हैं, वो कण कण में निवास नहीं करते हैं। तो कल भी आपने समझा कि आत्माएं भी परम धाम में रहने वाली हैं, क्योंकि पिता और बच्चे का घर एक ही होता है, अलग अलग तो नहीं होता है। तो ऐसे ही हम ईश्वर के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, तो हमारा घर एक ही है। आत्मा और परमात्मा परम धाम निवासी हैं, जिसे हम अलग अलग नाम भी देते हैं, वो शांति धाम है, निर्वाण धाम है, मुक्ति धाम है, ब्रह्म लोक है, मूल वतन है, जहां से आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आई हैं। फिर हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, जैसे और मान्यताएं हैं, आत्मा सो परमात्मा, तो क्या आत्मा सो परमात्मा है या आत्मा परमात्मा की संतान है, क्या कहेंगे? क्योंकि हम गाते हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुमेव माता श पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तो फिर हम ईश्वर के बच्चे हुए ना, जब हम उनको मात पिता गा रहे हैं। अगर सारे ही परमात्मा हो जाएं, आत्मा सो परमात्मा, सारे ही परमात्मा हो जाएं, तो सृष्टि कैसी होगी? तो नहीं है। तो फिर आत्मा परमात्मा की संतान है, आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, परमात्मा के समान हो सकती है ना। ऐसे कोई परमात्मा डिग्री नहीं है जिसे हम प्राप्त कर लें। तो दुनिया में भी एक बच्चा अपने पिता के समान हो सकता है, उस रूप में पिता के समान है, गुणों में पिता के समान है, तो लोग क्या कहते हैं, तो बाप पर गया है, बाप जैसा है, है ना। यहां तक कि बच्चे अपने पिता से भी ऊंचे चले जाते हैं। आज माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे ऊंचे से ऊंचा अपना भविष्य बनाएं। तो पिता जो है वो तो स्कूल में टीचर ही होगा और बेटा क्या हो जाता है, ऑफिसर बन जाता है। तो फिर भी पिता के सामने क्या है, वो पिता के सामने क्या है, बेटा ही है। लेकिन जैसे कहा कि अपने गुणों से, ऐसे ही जितनी भी आत्माएं हैं जिन्हें हम महान आत्माएं मानते हैं, देवात्माएं मानते हैं, धर्म आत्माएं मानते हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से परमात्मा समान स्थिति को प्राप्त किया। इसीलिए हम उन्हें भगवान का ही दर्जा देते हैं, यानी भगवान जैसे गुण थे उनके अंदर। आज ईसा मसीह को भगवान मानते हैं, महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं, हम राम को भगवान मानते हैं, कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसलिए क्योंकि उनके गुण कैसे रहे, ईश्वर के समान। और इसीलिए हम उनकी पूजा भी करते हैं, क्योंकि जो हमसे श्रेष्ठ हैं उनको हम पूज्य मानते हैं। दुनिया में भी कोई हमसे अनुभव में अधिक है, आयु में अधिक है, तो हम उनको क्या कहते हैं, क्या संबोधित करते हैं, पूज्य हैं, हमारे पूजनीय हैं ये। तो वो हमारी, वो जो आत्माएं, महान आत्माएं इस दुनिया में हुई, वो हमारे और भगवान के बीच की कड़ी थे, हमसे श्रेष्ठ थे, लेकिन परमात्मा नहीं थे। परमात्मा से ही उन्होंने वो शक्ति प्राप्त की। तो हम कहेंगे महान आत्माएं अनेक हैं, देवात्माएं अनेक हैं, श्रेष्ठ आत्माएं अनेक हैं, धर्म आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है और वो सबका पिता है। उन्होंने भी उनकी आराधना करके ये गुण अपने अंदर प्राप्त किए, उस पुरुषार्थ से वो भगवान के समान बन गए, ईश्वर के समान उनके अंदर वो गुण और व्यक्तित्व आ गए कि आज भगवान के रूप में ही उनको हम पूजते हैं। फिर हम परमात्मा की बजाय देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, यानी हम कोशिश करते हैं कि ईश्वर के गुणों और शक्तियों का अनुभव या प्राप्तियों का अनुभव हम उनके द्वारा करें। तो ये हमारा अपरोक्ष संबंध है, ईश्वर से हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, अपरोक्ष माना। जैसे मानो हम समझने की कोशिश करते हैं, कोई मेरा बेटा है और कोई मेरा भतीजा है, मानो, या भांजा है, जो भी हम कहेंगे। जो आपके बेटे का अधिकार है, क्या आपके भांजे का भी उतना ही अधिकार है? क्या कहेंगे। चलो वो आपको मिलने आता है तो आप उसको खुश करने के लिए कुछ देते हो, लेकिन आपका बेटा तो वारिस है, आपके पास जो कुछ भी है वो किसका है। हाँ, तो भगवान को हम डायरेक्ट संबंध से याद करते हैं और किसी के थ्रू हमारा संबंध है, जैसे कहा इनडायरेक्ट संबंध है, तो प्राप्ति में अंतर हो जाता है। एक बार ऐसे ही एक राजा था, वो महादानी था, मतलब हर रोज वो अपने राज्य में कोई भी गरीब है या कोई भी भिखारी है उनको वो रोज ही दान करता था पूजा करने के बाद। तो एक भिखारी रोज आता था वहां, तो एक दिन वो थोड़ा जल्दी आ गया तो उसने द्वारपाल को पूछा, तो उसने कहा राजा तो अभी पूजा कर रहा है, तुमको इंतजार करना पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा राजा भी पूजा करता है? तो उसने कहा हाँ राजा पूजा करता है, उसके बाद ही वो दान देता है। तो उसने कहा मैं देख सकता हूँ क्या पूजा करता है? उसने कहा देख सकते हो लेकिन पीछे रहो, मतलब आगे नहीं जाना। तो उसने कहा ठीक है, गया तो देखा राजा जो है वो लगभग पूजा पूरी कर रहा था और पूजा पूरी करते हुए उसने अपने हाथ ईश्वर की आगे जोड़े और कहा हे ईश्वर हमेशा मुझे इतना भरपूर रखना कि मैं ऐसे ही दान करता रहूं, तू दाता है और मुझे देते रहना। तो उसको दिमाग चला भिखारी का कि ये भी मांग रहा है, माना मैं तो यहां मांगने आता हूं, राजा भी मांग रहा है और भगवान से मांग रहा है और भगवान ने इसको इतना दिया है कि वो इतनों को देता है, फिर हम में बटता है तो वो थोड़ा थोड़ा बटता है। तो उसने सोचा फिर क्यों ना मैं भी पूजा करूं, भगवान से मांगू, जब राजा को भगवान इतना देता है। फिर उसने ये भी देखा कि राजा किसकी पूजा कर रहा है, तो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, तो हनुमान जी ने राम की पूजा की, माना जैसे उसका वो दिमाग चला और फिर वो जाने लगा। तो द्वारपाल ने कहा कि तुम दान लिए बिना जा रहे हो? तो उसने कहा कि अब मुझे जरूरत नहीं है। उसने कहा क्यों? उसने कहा मुझे समझ में आ गया राजा को कहां से मिलता है, मैं भी वहीं से लूंगा और मैं यहां रोज दान लेते हुए भी भीख मांग रहा हूं, हमेशा मेरा भीख मांगना तो छूट नहीं गया, अब मैं भगवान से लूंगा जो मुझे भीख मांगनी ही ना पड़े। तो जब राजा को इतना भरपूर करता है भगवान, तो कहने का भाव यही है कि जब हम इनडायरेक्ट संबंध से ईश्वर को याद करते हैं तो वो प्राप्ति का अनुभव हमें नहीं होता, तो राजयोग में हम डायरेक्ट परमात्मा शिव का ध्यान करते हैं, उनके ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो आपने कल भी अनुभव किया, जो थोड़ा आपको अभ्यास कराया गया राजयोग का, और आज हमें वो सत्य परिचय मिला है परमात्मा का, तो हम उसको उसी स्वरूप से, उनका जो ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो परम धाम में निवास करते हैं, उस रूप से ही हम उन्हें याद करेंगे। और परमात्मा का कर्तव्य क्या है, नाम रूप धाम ये हमने समझा, अब वो क्या कर्तव्य करते हैं, क्योंकि भगवान को हम याद करते हैं, इतना याद करते हैं, तो किसी को कोई मनुष्य ऐसे ही याद नहीं करता, जरूर वो हमारे लिए कुछ करते हैं, उनसे हमें कुछ प्राप्ति होती है तभी हम उन्हें याद करते हैं। और शिव के मंदिर तो कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिव के मंदिर नहीं होंगे, शिव के मंदिर सभी जगह होते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनको हम इतना याद करते हैं, परमात्मा ने इस संसार में जब धर्म ग्लानि का समय होता है, जो हम कहते हैं कलयुग की जब अति होने लगती है, जिसे गीता में भी कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य त्रदात्मानम सृजाम्यहम, है ना, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और फिर से सद्धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो कई बार हमें ख्याल चल सकता है कि दुनिया में ही अगर भगवान है और इतना सब कुछ दुनिया में चल रहा है तो वो क्या देखता रहता है, तो वो यहाँ है ही नहीं, इसलिए कहा मैं आता हूँ, कहा ना यदा यदा धर्म से ग्लानी, तो मैं उस समय पर आता हूँ, अपने धाम से मैं अवतरित होता हूँ। तो यहाँ होता तो जैसे माँ बाप के सामने कोई बच्चे लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ने देंगे क्या, कहेंगे तुमको क्या चाहिए बताओ, हम बैठे हैं अभी, हमारे सामने क्यों लड़ते हो। तो भगवान भी अगर इस दुनिया में है तो ये सब सिर्फ होते हुए देखता नहीं रहेगा कि दुनिया में ये सब हो रहा है। तो भगवान कभी भी आत्मा के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते, आत्मा अपने कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, संसार में तीन शक्तियां काम करती हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, तीनों अनादि अविनाशी हैं। आत्मा भी अनादि अविनाशी है, परमात्मा भी और प्रकृति। आत्मा और प्रकृति के मेल से ये संसार चल रहा है और परमात्मा न्यारा है, माना वो क्रिएटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। वो इस संसार का हिस्सा नहीं है। जैसे एक फिल्म का क्रिएटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अलग होता है, एक्टर्स अलग होते हैं, हम इस दुनिया के एक्टर हैं। यानी आत्माएं जो हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, लेकिन परमात्मा तो प्रोड्यूसर है, तो वो तभी हस्तक्षेप करता है, मालिक है। प्रोड्यूसर जो है कहानी में चेंज करवा सकता है, तो मालिक है वो। और जब उसे लगता है कि मेरी आवश्यकता है, अब मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत है, तब वो इस दुनिया में आता है और अपना कार्य करता है। तो जैसे कहा कि उसके उनके तीन कार्य हैं, स्थापना, पालना और विनाश। और उसका यादगार है शिवरात्रि हम मनाते हैं। रात्रि माना जब अज्ञान, अंधकार अपने चरम सीमा पर होता है। कलियुगी रूपी अज्ञान, अंधकार की रात्रि अति में चली जाती है, तब परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य इस धरा पर अवतरित होते हैं। लेकिन वो तो निराकार हैं और गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, तो फिर परमात्मा एक साकार मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसे वो ब्रह्मा नाम देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा स्थापना के निमित्त हैं। तो उनके द्वारा फिर से वो नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं, जो आप चित्र में देख रहे हैं, सतयुगी यानी स्वर्ग की सृष्टि की स्थापना। तो भगवान के लिए कहते हैं, इसमें भी माना गया कृष्ण धर्म में भी, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने ही जैसा सर्वगुण संपन्न बनाया। वो तो जब हम भगवान को भूलते हैं, अपने कर्मों से गिरने लगते हैं, अपने आप को भूलते हैं, तब फिर हम अपने लिए कलयुग बना लेते हैं। भगवान हमारे लिए कलयुग की सृष्टि नहीं रचते। नहीं तो कई बार हम शिकायत करते हैं ना, दुनिया बनाने वाले तूने ये कैसी दुनिया बनाई। तो भगवान ने हमारे लिए ऐसी दुनिया नहीं बनाई। कोई भी माता पिता अपने बच्चों के बुरे की कामना करेंगे? हाँ, कभी भी आप सोचेंगे बच्चों के लिए कैसा चाहते हैं? हम दुखी रहें, लेकिन बच्चे रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए ना, उन्हें कोई भी प्रकार का दुख जीवन में ना हो। तो वो हमारा माता पिता है, वो हमारे लिए ऐसी दुनिया क्यों बनाएंगे? तो भगवान ने तो हमारे लिए स्वर्ग बनाया। तो वो स्थापना का कार्य परमात्मा वर्तमान में ईश्वर का अवतरण हो चुका है, क्योंकि ये वो समय चल रहा है अभी, और वो ये सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य ब्रह्मा के द्वारा करा रहे हैं। और कलयुगी सृष्टि, पुरानी सृष्टि जब हो जाती है, तो उसका विनाश होता है शंकर जी के द्वारा। तो ऐसे विनाश के साधन दुनिया में बन जाते हैं कि दुनिया को विनाश होने में ज्यादा समय फिर नहीं लगता। और विष्णु जी जो है वो नई सतयुगी सृष्टि की पालना करते हैं, जो वैकुंठ के फिर मालिक कहलाते हैं। तो परमात्मा इन तीन देवताओं के द्वारा, हम कहेंगे ये इनका जैसे मंत्रिमंडल है, और इनके द्वारा वो करण करावनहार है, वो खुद नहीं करता, लेकिन इनके द्वारा, इन देवताओं के द्वारा वो ये कार्य कराते हैं। तो ये वर्तमान समय हम कहेंगे ये वही समय चल रहा है। और भी जब आपके सेशंस होंगे आगे, तो थोड़ा और विस्तार से आप इसको समझेंगे। तो अभी हमने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, उनका नाम है, अब आप बताएंगे, उनका नाम है शिव, और प्यार से हम उनको बाबा कहते हैं, क्योंकि बाबा पिता के लिए संबोधन है हमारे प्राचीन समय में। आजकल तो पिता को क्या कहते हैं? डैड, है ना। तो हमने उनको डैडी कर दिया, नाम ही ऐसा, मम्मी। मम्मी किस क्या होता है इंग्लिश में? मम्मी माना डेड बॉडी को प्रिजर्व करते ना, उसको मम्मी कहते हैं। तो हमने अंग्रेजी संस्कृति को अपना लिया, तो हमारे जो शब्दों का जो प्यार और महत्व था वो खत्म हो गया। तो प्राचीन समय में हम पिता को बाबा कहते थे, तो वो हमारे बाबा हैं, पिता हैं। तो शिव बाबा हम उनको प्यार से कहते हैं। और रूप परमात्मा का ज्योति बिंदु स्वरूप है, और गुणों में बताइए, गुणों में क्या है? परमात्मा सिंधु के समान है, सागर के समान है, इसीलिए वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, उनको सागर से हम तुलना करते हैं और वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं और उनका कर्तव्य है कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना, अधर्म वाली सृष्टि से पुनः धर्म की स्थापना करना है। तो अभी हम याद करेंगे परमात्मा को, योग लगाएंगे उनसे, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी, तो कुछ मिनट, 5-7 मिनट हम परमात्मा के ध्यान में बैठेंगे। आप सभी सीधे होकर के बैठिए और जैसे मैं आपको विचार दूंगी उन्हीं विचारों का अनुसरण करते हुए उनको अनुभव करें। हो सकता है मन थोड़ा इधर उधर जाए, लेकिन फिर से अपने मन को उन्हीं विचारों में लाने का प्रयास करेंगे। अपने मन को समेट लें, आसपास के वातावरण से, आवाजों से, व्यक्तियों से, और मन को विचार दें। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप मस्तक के मध्य में विराजमान आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा अपने निजी स्वभाव में शांत स्वरूप हूं, शांति मुझे पसंद है, शांति में ही सुख समाया है, शांति ही शक्ति है। कोई मुझे कितना भी अशांत करने की कोशिश करे, मुझे अपने शांत स्वरूप में रहना है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, परम धाम की रहने वाली हूं, इस जगत से पार, सूर्य चांद तारों से भी पार परम धाम मेरा निजी घर है, जहां पर सर्वत्र सुनहरी लाल प्रकाश है। ये ब्रह्म महातत्व है। मेरे पिता परमात्मा शिव परम धाम निवासी हैं। मैं स्वयं को शिव बाबा के समीप अनुभव कर रही हूं। तो मन रूपी आंखों से देखें ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा को, जो गुणों में सिंधु के समान है। शिव बाबा आप शांति के सागर हो, आपकी याद से, सामीप्य से मेरा मन शांत होता जा रहा है। आप सर्वशक्तिवान हैं, आपकी शक्तियों का अनुभव मैं स्वयं में कर रही हूं। और जब ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं असंभव को भी संभव कर सकती हूं। आप ही मेरे साथी हैं, मेरे सच्चे सच्चे माता पिता, शिक्षक सतगुरु हैं। मैं भाग्यवान हूं परमात्मा का सत ज्ञान मुझे मिला है। शिव बाबा आपने मुझे अपना बच्चा बनाकर, मुझे अपना प्यार देकर, मेरे जन्म जन्मांतर की अभिलाषा पूर्ण की है। मैं उस ईश्वरीय प्यार का अनुभव कर रही हूं। शिव बाबा की याद मुझे अतींद्रिय सुख का अनुभव कराने वाली है। बाबा आप मेरे सदा कल्याणकारी हैं, मुझे सद्बुद्धि सद्विवेक प्रदान करने वाले हैं, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति देने वाले हैं। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं सदा आपकी श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊंगी। शिव बाबा से शांति और शक्ति का अनुभव लेकर मैं पुनः इस भौतिक जगत में अपने शरीर में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। अब मेरा मन पहले से अधिक शांत और शक्तिशाली है और अपने दिन भर के कार्यों में मैं इसे स्मृति में रखूंगी। ओम शांति।